आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी है और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 67% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। योजना के अंतर्गत खोले गए कुल खातों में से 55% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रुपए होगा। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख तक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो फॉनक्लेवेरिन नई दिल्ली में भारत चिली संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉ जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन देने के लिए चिली का धन्यवाद किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में चिली की भागीदारी को महत्व देता है। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ सुरक्षा के अल्पकालिक उपायों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। चिकित्सकों की सुरक्षा और उनके कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार के बारे में सुझाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्यबल का गठन किया है। कल केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिव ने नई दिल्ली में कार्यबल की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में कार्यबल के सदस्यों ने जानकारी दी कि उन्हें इस संबंध में करीब 300 से 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एनटीएफ को सुझाव से संबंधित शीर्षक के एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल में कोई भी अपने सुझाव भेज सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। बंद के आह्वान का मिला जुला असर है। कोलकाता में सड़कों पर वाहन कम हैं, लेकिन दुकानें, स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं। कोलकाता और आसपास के जिलों में विभिन्न स्थानों पर हड़ताल से उपनगरीय रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मालदा और बैरकपुर में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। आरजीकर दुष्कर्म मामले को लेकर कल राज्य सचिवालय की ओर से रैली में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस बर्बरता के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के इस चरण के लिए नामांकन कल शाम समाप्त हो गया था। इस चरण में 18 सितंबर को 6 जिलों की 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। असम सरकार ने कहा है कि असम बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से सील करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने आज विधानसभा में बताया कि सीमा पर बाड़ लगाने से सीमा पार से अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। आज से पेरिस में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। भारत की तरफ से इस बार पैरालंपिक 2024 में कुल 84 पैरा एथलीट का दल 12 अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। पिछले पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले 5 में से 4 पैरा एथलीट इस बार भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।